हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वो सफेद जिन उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह रोने लगा था और कहने लगा था, मुझे माफ कर दो जोया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कब इतना बड़ा हैवान बन बैठा, कब मैं इतना ज्यादा बड़ा गुनाह कर बैठा, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से जोया से अपने किए की माफी मांगने लगा था। तब जोया ने बिल्कुल सपाट लहजे में उसे कहा था, मेरे माफ करने या ना करने से क्या होता है, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। 6 महीने से मैं इस कमरे में कैद हूं, मेरे घर वाले मुझे जानवरों की तरह खाना देते हैं, कोई मुझसे मिलना तक पसंद नहीं करता है। जैसे ही जोया ने ये कहा, वो सफेद जिन उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह से रोने लगा था और कहने लगा था, मुझे माफ कर दो जोया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कब इतना बड़ा हैवान बन बैठा, कब मैं इतना ज्यादा बड़ा गुनाह कर बैठा, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर वो बुरी तरह से जोया से अपने किए की माफी मांगने लगा था। तब जोया ने बिल्कुल सपाट लहजे में उसे कहा था, मेरे माफ करने या ना करने से क्या होता है, तुमने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। 6 महीने से मैं इस कमरे में कैद हूं, मेरे घर वाले मुझे जानवरों की तरह खाना देते हैं, कोई मुझसे मिलना तक पसंद नहीं करता है। मैं अपने तीनों भाइयों की इकलौती बहन थी, सभी मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरा हर कदम पर नखरा उठाया करते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे भाई मुझसे डरते हैं। उन्हें ये लगता है कि कहीं मैं उनकी जान ना ले लूं। हर वक्त जिंदगी में लाडली थी जो मुझ पर अपना प्यार लुटाया करते थे, वे सभी मुझसे डरने लगे हैं। इतना ही नहीं, मेरे बाबा मेरे ऊपर से भूत प्रेत जिनका साया उतारने के लिए मौलवी फकीरों को अपनी सारी कमाई लुटा चुके हैं, इस घर को भी गिरवी रख चुके हैं, कोई कमाई का जरिया भी नहीं है, और तुम मुझे अपने किए की माफी मांग रहे हो। तब बचा ही क्या है, और ये सब कुछ करने से क्या फायदा, अब सिर्फ और सिर्फ मेरी जान लेना बचा है, तो आगे बढ़ो, मेरा गला दबाओ और मुझे मार दो। अब मेरी मौत ही कम से कम मेरे घर वाले एक ही बार रोककर मुझे भूल तो जाएंगे, लेकिन इस तरह से रोज रोज मरने से बेहतर है कि मैं एक ही बार अपनी जान दे दूं। जैसे ही जोया ने ये सारी बातें कहीं, वो सफेद जिन अब काफी ज्यादा शर्मिंदगी में डूबा जा रहा था, और उसने एक एक करके जो कुछ भी जोया के साथ किया था वो एक एक करके उसकी आंखों के सामने एक मूवी की तरह चलने लगा था। तब उसने जोया से कहा था, मैं मानता हूं मैंने काफी सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब नहीं, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी हर एक गलती का मुआवजा देने को तैयार हूं। इतना ही नहीं, जो भी तुम मुझे सजा दोगी मैं वो सजा भी सहने को तैयार हूं। तभी जोया उसकी ओर देखकर कहने लगी थी, मुझे तुझ पर यकीन नहीं है, तू मक्कार है और तू कभी भी मक्कारी कर सकता है, मुझे तुझ पर किसी भी तरह का कोई यकीन नहीं है। जैसे ही जोया ने ये कहा, अचानक से एक दूसरी आवाज वहां गूंजी थी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि जिन महाराज अमन की थी। अमन ने जोया की ओर देखते हुए कहा था, तुम्हें यकीन करना होगा जोया, अगर इसने अब किसी भी तरह की कोई बुरी हरकत तुम्हारे साथ करने की कोशिश की तो मैं इसे नरक की आग में जलने के लिए छोड़ दूंगा। मैं इसे एक ऐसी आग में जलने के लिए छोड़ दूंगा जहां से ये जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे ही अमन ने ये कहा, जोया हैरान हो गई थी। वो तो ये देखकर हैरान थी कि अमन उसके सामने खड़ा हुआ था। अमन को जोया बहुत अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि अमन उस शहर का नंबर वन बिजनेसमैन था और उसके फोटोज आए दिन वहां के न्यूज़पेपर में छपती रहती थीं। वो इतना ही नहीं, जोया ने खुद अमन की कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन इससे पहले कि उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आती वो इस जिन की गिरफ्त में आ चुकी थी। तभी जोया ने हिचकिचाते हुए अमन से कहा था, आप तो राठौड़ एम्पायर के मालिक हैं, आप यहां अचानक से मेरे कमरे में कैसे आ सकते हैं? तभी अमन हल्का सा मुस्कुराते हुए जोया से बोला था, तुम इस जिन को एक मौका दे दो और तुम मेरा राज जान चुकी हो, मैं तुम्हारी यादें अभी मिटाना नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम सारी चीज याद रखो और जिंदगी से एक सबक लो। और एक और बात, तुम्हारे साथ ये जो कुछ भी हुआ है इसकी भरपाई करने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है, ये सब कुछ ठीक कर देगा, बस एक बार इस पर यकीन करके देखो, और अगर इसने तुम्हारे साथ किसी तरह की कोई हरकत की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उस जिन ने अमन की बात सुनी, जल्दी से वो जिन अमन के पैरों में गिर गया था और कहने लगा था, जिन महाराज ऐसा मत करिए, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं इसकी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दूंगा। जैसे ही उस जिन ने एक बार फिर गिड़गिड़ाना शुरू किया था, अब जोया को भी उस पर रहम आ गया था और वो कहने लगी थी, ठीक है मिस्टर राठौर, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे एक मौका देने के लिए तैयार हूं, और मैं भी देखना चाहती हूं कि आखिरकार ये कब कैसे सब कुछ ठीक करता है। जैसे ही जोया ने ये कहा, वो जिन मुस्कुराने लगा था और तब तक अमन वहां से गायब हो चुका था। अमन को इस तरह से गायब होता हुआ देखकर जोया काफी हैरान हो गई थी। तब उस सफेद जिन ने जोया से कहा था, मैं अब ये दरवाजा खोल दूंगा, तुम्हें बाहर जाना है और अपने माँ बाप से मिलना है। जैसे ही उस जिन ने ये कहा, जोया की आंखें भर आई थीं। पिछले 6 महीने से उसने नजर भरकर अपने माता पिता को नहीं देखा था, ना ही अपने भाइयों से मिली थी। इसीलिए जैसे ही उस जिन ने दरवाजा खोला, जोया ने उस दरवाजे से बाहर निकलने से पहले एक बार फिर उस जिन की ओर देखा था। वहीं दूसरी ओर परीलोक में इस तरह का कंपन देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और उसने घबराकर अपनी परियों की ओर देखा था। इसका मतलब साफ था कि एक बड़ी ही जोरदार मूसलाधार वर्षा होने वाली थी और बारिश में इतने भारी कपड़ों के साथ इतना कड़ा नृत्य करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। रानी माँ को अपनी परियों की काफी ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी सारी परियां किसी भी तरह के दुख का सामना करें। जल्दी से रानी माँ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर इंद्रदेव से प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी कि अभी वो बिल्कुल भी बरसात ना करे। लेकिन उन्हें प्रार्थना करने में थोड़ी सी देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक मूसलाधार बरसात शुरू हो चुकी थी। जैसे ही रानी माँ ने ये देखा, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो अपनी परियों को अपनी जादुई छड़ी का प्रयोग करके उस मूसलाधार वर्षा से नहीं बचा सकती थी, क्योंकि उन्हें अपने गुरु को अपने कड़े तप और कड़ी मेहनत से ही प्रसन्न करना था। क्योंकि अगर उन्होंने इस तरह की किसी भी तरह के जादू का प्रयोग किया तो उनका पूरी की पूरी मेहनत बेकार हो सकती थी। रानी माँ ने देखा कि सभी परियों के लिए अब नृत्य करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक तो उन्होंने काफी सारे गहने, हीरे, मोती, जवाहरात पहने हुए थे, ऊपर से उनके वस्त्र काफी ज्यादा भारी थे और बारिश उनके ऊपर गिरने की वजह से उनके लिए अब नृत्य कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहीं तारा परी की आंखों से भी मोती बहना शुरू हो गए थे, क्योंकि एक तो वो माँ बनने वाली थी, ऊपर से इस तरह की बारिश में नृत्य कर रही थी और अभी तक कुलगुरु भी प्रसन्न नहीं हुए थे, तो ये सारी बातें उसे बहुत ही परेशान कर रही थी।
कहीं ना कहीं तारा परी सोचने लगी थी कि कहीं उसने वापस परीलोक में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं करती, क्योंकि अगर वो ऐसे ही परीलोक में रह गई तो उसका पृथ्वी पर जाना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जब तक उसका बच्चा अपने पिता के खून का अभिषेक नहीं पा लेता तब तक उसके अंदर जिन्नातों की शक्तियां नहीं आएंगी, और ये उसके पैदा होने के बाद ही होने वाला था। तो कहीं ना कहीं तारा को अब बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके घुटनों तक पानी आ गया था, लेकिन इस बीच किसी भी परी के नृत्य की तेजी में इतनी सी भी कमी नहीं आई थी, वो इसी तरह से डांस करती रही। वहीं दूसरी ओर जैसे ही जोया ने उस जिन को वापस पीछे एक बार फिर मुड़कर देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था अगर ये जिन अपनी बात से पलट गया तो उसके लिए, कहीं ना कहीं तारा परी सोचने लगी थी कि कहीं उसने वापस परीलोक में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं करती, क्योंकि अगर वो ऐसे ही परीलोक में रह गई तो उसका पृथ्वी पर जाना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि जब तक उसका बच्चा अपने पिता के खून का अभिषेक नहीं पा लेता तब तक उसके अंदर जिन्नातों की शक्तियां नहीं आएंगी, और ये उसके पैदा होने के बाद ही होने वाला था। तो कहीं ना कहीं तारा को अब बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उनके घुटनों तक पानी आ गया था, लेकिन इस बीच किसी भी परी के नृत्य की तेजी में इतनी सी भी कमी नहीं आई थी, वो इसी तरह से डांस करती रही। वहीं दूसरी ओर जैसे ही जोया ने उस जिन को वापस पीछे एक बार फिर मुड़कर देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था अगर ये जिन अपनी बात से पलट गया तो उसके लिए इस बार बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है, लेकिन वो जिन अपनी बात से नहीं पलटा था। जैसे ही जोया ने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलकर उसने सामने का नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उसने देखा कि उसके भाई एक तरफ टूटे हुए से खड़े हुए थे और उसके माँ बाप अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाने के लिए तैयार खड़े हुए थे। जैसे ही जोया ने ये देखा उसने जोरों से एक चीख मारी थी। वो तुरंत अपने पिता के सामने जाकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी थी, नहीं नहीं अब्बू, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके भाइयों ने तो अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी। जोया एक छोटे भाई से बड़ी बहन थी। जोया ने अपने भाइयों की ओर देखा था, तभी उसके भाइयों ने जोया का हाथ झटक दिया था। जोया के अब्बा उस पर तेज चिल्लाते हुए बोले थे, तू यहाँ क्या कर रही है? तू जाओ, आ जाकर उस कमरे में बंद हो जा, इससे पहले कि तू हमारी जान ले ले, या तू मेरे बेटे को मार दे, या फिर कर्जदार आए और हमें उल्टी सीधी बातें सुनाए, हमारी बेइज्जती करें। इस घर को नीलाम करने के लिए घर के आंगन में नीलामी की बोली लगे, उस बेइज्जती से बचने के लिए ही हम लोगों ने मरने का डिसीजन ले लिया है, और आज हम सब अपनी जान देकर रहेंगे, और ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। मनहूस, काश काश तू पैदा ही नहीं हुई होती। अगर तू पैदा ही नहीं हुई होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पिछले 6 महीने से तेरी बीमारी के लिए हमने दुनिया भर का कर्ज ले लिया है, इस घर को भी गिरवी रख दिया है, हमारे पास कोई काम तक नहीं बचा है, हम लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, घर में खाने तक के लिए राशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। तू जा, चली जाओ यहाँ से, और वापस से हमें अपनी शक्ल मत दिखाना, और हमें अब कम से कम, तूने चैन से जीने नहीं दिया तो कम से कम हमें चैन से मरने तो दे। जैसे ही जोया ने अपने अब्बू की बात सुनी उसके चेहरे पर पसीना आ गया था और वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हो गया था। जोया को अब अपना हंसता खेलता परिवार नजर आने लगा था। जोया को अच्छी तरह से याद है जब वो जिन उसकी जिंदगी में नहीं आया था उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल थी। इतना ही नहीं, हमेशा जोया की शैतानियों से, उसकी बातों से, उसकी हंसी से पूरे का पूरा घर गूंजता रहता था। जोया कितनी सारी शैतानियां करती थी। इतना ही नहीं, वो हमेशा से ही अपने सभी भाइयों की बहुत ज्यादा लाडली थी। कभी कोई भाई किसी तरह से उसका नखरा उठाता था, कोई सा भाई उसकी चुटिया बनाया करता था, उसके बालों को संवारा करता था। इतना ही नहीं, हर वीकेंड पर उसके अब्बा उसके सर में तेल की मालिश किया करते थे। पूरा घर जोया की हंसी से गूंज जाता था। जोया को जैसे जैसे सब कुछ याद आ रहा था उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे, और अचानक जोया ने अपने आंसुओं को पूछ कर गुस्से से उस जिन की ओर देखा था। वो जिन अपना सर झुकाए हुए खड़ा हुआ था। अब इससे पहले कि जोया उस जिन को कुछ कहती तभी जोया की माँ आगे आई थी और जोया को देखकर कहने लगी थी, बेटी वो जो भी तेरे ऊपर साया है वो तुझे नहीं छोड़ेगा, और इससे अच्छा है कि हम लोग अपनी जान दे दें। हम तुझे इस हालत में नहीं देख सकते हैं, हम तुझे इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख सकते हैं। तू जा अपने कमरे में चली जाओ और हमें मर जाने दे। जैसे ही जोया की अम्मी ने ये कहा उसने अचानक आगे बढ़कर अपनी अम्मी जान को गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, नहीं अम्मी ऐसा मत कहिए, कुछ मत कीजिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी, आप लोगों के बगैर मैं भी मर जाऊंगी, प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। तभी जोया के अब्बा उसके सामने आए थे और कहने लगे थे, जोया हम में तुझे मारने की हिम्मत नहीं है, लेकिन हम अपनी जान तो दे सकते हैं ना, तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से चली जाओ। ऐसा कहकर उसके अब्बू ने जोया का हाथ पकड़ लिया था और उसके अब्बू जोया को जबरदस्ती उसके कमरे की ओर ले जाने लगे थे।